मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यथोक्तेनानेनाभिहितपरिणामेन सर्वात्मसाधारणेन उपयोगेन ये उपलक्षिता योगिनस् ते द्विविधाः। यथोक्त कथित परिणाम की अपेक्षा जो उपलक्षित किए गए हैं और सर्वात्म साधारण अर्थात सब आत्माओं में समान रूप से जो पाया जाता है, ऐसे उपयोग के माध्यम से जो उपलक्षित किए गए हैं, उपयोगो लक्षणम इस सूत्र के माध्यम से योगिनस्ते द्विविधा। तो उपयोग के योग वाले जो जीव हैं उनके दो भेद हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी हैं और मुक्त जीव भी हैं, इन दोनों के पास उपयोग है, उपयोग जीव का लक्षण है। संसरणं संसार, संसरण करने का नाम संसार है। परिवर्तन इत्यर्थ, संसरण करने का अर्थ क्या हो गया? तो आचार्य कहते हैं परिवर्तित होते रहना, एक रूप धारण किया दूसरा कर लिया फिर तीसरा चौथा, ऐसे बदलते ही रहना, बदलते रहने का नाम संसार है। सेषाम अस्ति ते संसारिण, ये इन जीवों के पास है, तो जिन जीवों के पास है वे संसारी है। तत्परिवर्तनम पंचविधम, वह परिवर्तन पांच प्रकार का है। द्रव्य परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तनम, काल परिवर्तनम, भव परिवर्तनम, भाव परिवर्तनम चेति। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे पांच परिवर्तन है। तत्र द्रव्य परिवर्तनम द्विविधम, उन पांच परिवर्तनों में जो पहला द्रव्य परिवर्तन है उसके दो भेद हैं। नौकर्म द्रव्य परिवर्तन, कर्म द्रव्य परिवर्तन चेति, एक नौकर्म द्रव्य परिवर्तन है। नौकर्म अपना शरीर होता, प्रथम नौकर्म तो शरीर होता है, फिर अन्य वस्तुएं भी नौकर्म होती है, पर यहां पर शरीर की अपेक्षा ग्रहण करने की है। और दूसरा कर्म द्रव्य परिवर्तन चेति, अपने जो बंधे हुए कर्म हैं वो भी पुद्गल द्रव्य है, शरीर भी पुद्गल द्रव्य है, कर्म भी पुद्गल द्रव्य है। कर्म बांधते समय जो अपन ने भाव किए थे वो जीव की पर्याय थी, लेकिन उन भावों से जो कर्मण वर्गणा है, कर्मों के परमाणु पुंज बनकर आत्मा में चिपक गई, वो द्रव्य बनते हैं, वो पुद्गल द्रव्य। तो उसको कर्म द्रव्य कहते हैं। तत्र, अब उनमें ये जो दो भेद बताए उनमें नौकर्म द्रव्य परिवर्तन नाम, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन किसका नाम है? तो आचार्य कहते हैं त्रयाणम शरीराणम षण्णाम पर्याप्ति नाम योग्य ये पुद्गला। तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल होते हैं जिनको आहार वर्गणा कहते हैं, वे एकेन जीवेन एकस्मिन समये गृहीता, एक जीव के द्वारा एक समय में ग्रहण किए गए वे पुद्गल जो आहार वर्गणा के रूप में थे। वर्गणा वर्गों के समूह के कहते हैं, और वर्ग शक्ति पुंज को कहते हैं, जो पुद्गल के परमाणुओं से बने हुए शक्ति पुंज वर्ग कहलाते हैं, और उन वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, और वर्गणा 23 प्रकार की होती है। 23 वर्गणाओं में से 18, 23 मीन्स 23, तो उसमें से 18 प्रकार की वर्गणा है अग्राह्य है, अर्थात जीव द्रव्य के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती, लेकिन 5 वर्गणाएं ग्रहण की जा सकती है। तो उन 5 वर्गणाओं में ये आहार वर्गणा आती है। आहार वर्गणा, शब्द वर्गणा, फिर मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा, ये 5 ग्रहण करने में आती है, बाकी कोई ग्रहण करने में नहीं आती। तो ऐसे बहुत सारे पुद्गल हैं जिनको अपन कभी ग्रहण कर ही नहीं सकते, कोई जीव वो रहते हैं जगत में, और बाकी इनको अपन ग्रहण करते हैं। तो अभी ये आहार वर्गणा की बात चल रही है। तो कर्म, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन में आहार वर्गणाओं को ग्रहण करने का वर्णन है, और कर्म द्रव्य परिवर्तन में जो ग्रहण करने योग्य 5 वर्गणा है उनमें से अंतिम कार्मण वर्गणा है। कार्मण वर्गणा को जब जीव ग्रहण करता है तो फिर वो कर्म के रूप में परिवर्तित होकर के आत्मा के प्रदेशों में बंध जाती है, और फिर वो कर्म अपने एक गणित के अनुसार उदय आदि को प्राप्त हो करके अपने परिणाम जीव में उत्पन्न करता है निमित्त रूप से। नैमित्तिक भाव जीव के अंदर होता है, निमित्त कर्म होता है। तो अभी नौकर्म द्रव्य की चर्चा है कि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल होते हैं उनको एक जीव एक समय में ग्रहण कर लेता है। और अब यहां से शुरू करना है अपने को नौकर्म द्रव्य परिवर्तन कितना विस्तृत है उसको अपन देखते हैं। स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि बिस तीव्र मंद मध्यम भावेन च यथावस्थिता। एक समय में उसने जितने भी नौकर्म परमाणुओं को ग्रहण किया वो पुद्गल द्रव्य में स्निग्धता होती है, रूक्षता होती है, पुद्गल द्रव्य में वर्ण होता है, पुद्गल द्रव्य में गंध है, स्पर्श है। तो एक निश्चित स्निग्धता, रूक्षता आदि कोई भी अवस्था को लेकर वो तीव्र मंद या मध्यम भाव से उसने उसको ग्रहण कर लिया। तो वो जो नौकर्म वर्गणाएं थी वो उसके शरीर में आ गई, शरीर में आ गई, और शरीर में से कुछ निकलते भी रहती हैं नौकर्म वर्गणाएं, पुरानी वाली, नई आती है पुरानी निकल जाती है, ऐसा चलता है। अभी वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उसके अनुसार एक वर्ष में 100 में से 98 वर्गणाएं अलग हो जाती है और बदल करके नई आ जाती है, सिर्फ 2 ही बचती है। अपने शरीर के जितने परमाणु हैं उनमें से 98% झड़ जाते हैं और 2% पुराने रहते हैं, बाकी फ्रेश नए आ जाते हैं। पर कर्म के उदय से वो आकार प्रकार वैसा ही रहता है, तो अपने को लगता है कि कितना पुराना हो गया शरीर, ऐसा लगता है अपने को। वास्तव में वो शरीर के जो परमाणु थे वो तो बदलते ही रहते हैं, आकार एक जैसा रहने के कारण अपने को लगता है कि जैसे कोई वृद्ध है उसके और बाल सफेद हो गए, जितने हो गए थे उससे ज्यादा सफेद हो गए, तो ऐसा लगता है कि ये पुराना पड़ गया इसलिए सफेद हो गया। वास्तव में वो सब कर्म के उदय से ऐसी ऐसी परिणतियां पुद्गल में पाई जाती है, परमाणु फ्रेश रहते हैं, आकार ओल्ड होता है, वो अपने पुराने आकार में ही सेट हो जाते हैं वो परमाणु, ऐसा रहता है, वो बड़ी अनोखी प्रक्रिया है। समाधि तंत्र ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, प्रविशद गलताम व्यूहे देहेणूनाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। अबुद्धयः, जिनके पास बुद्धि अर्थात विवेक ज्ञान नहीं है, ऐसे बहिरात्मा जीव, मिथ्या दृष्टि जीव प्रवेश करने वाले और झड़ने वाले परमाणुओं के समूह रूप इस शरीर के प्रति समाकृतों, आकृति की समानता होने पर, आकृति समान होने पर ऐसा निर्णय कर लेते हैं, वो स्थिति भ्रांत है, उनको स्थिरता की भ्रांति हो जाती है। क्या ये तो बहुत पुराना शरीर है मेरा, कितने साल हो गए मेरे, तो वो अपने शरीर को उतने साल पुराना मानता है। और जो बात साइंटिस्ट लोगों ने अभी निकाली है, ये हमने सन 1996 के आसपास या 1998 के आसपास ये पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने अभी ये चीज़ खोज करके निकाली है कि 1998 में ये चीज़ हमने देखी थी एक बुक में, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की एक बुक थी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एक साल में 98% चेंज हो जाता है, बॉडी शेप वही रहता है, इसलिए अपने को लगता है कि वही का वही है, अपन समझते पुराना हो गया। तो वही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सैकड़ों वर्ष पहले कही थी, 1500 वर्ष पहले। वो क्या कहते हैं कि प्रवेश करने वाले और झड़ने वाले परमाणुओं का समूह है ये शरीर, लेकिन इसकी आकृति वैसी रहती है, क्योंकि नाम कर्म का उदय है, नाम कर्म आकृति को वैसे ही बना के रखता है। नाम कर्म एक बर्तन के समान है, अब उस बर्तन में अगर आप पानी डालोगे तो पानी का वही शेप बनेगा, पानी भले नया हो, तो पानी का आकार वैसे ही बनता है, तो वैसे ही शरीर में वैसे ही आकार बन जाता है। तो फिर स्थिति भ्रांतिया, अज्ञानी जीवों को स्थिरता का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, क्या रे ये तो वही है वही है वही है, स्थिर है ऐसा समझते हो, जबकि स्थिर नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग है, लेकिन उनको स्टेडी लगती है वो चीज। और तम आत्मानं प्रपद्यन्ते, उसी को आत्मा मान लेते हैं, मैं ही तो हूं मैं ही तो हूं मैं ही तो हूं, शुरू से उसमें रहते रहते वो और मैं ये एक हो जाते हैं धारणा में। तो शरीर और जीव, शरीर एक्चुअली जीव का अधिष्ठान है, निवास स्थान है, और जीव एक्चुअली शरीर का अधिष्ठाता है, यानी उस निवास में रहने वाला निवासी है। तो निवासी और निवास इतने निकट है, 24 घंटे साथ हैं। तो कई बार दोस्तों में बोलते हैं ना कि हम दो तन हैं लेकिन एक रूह है, ऐसे कहते हैं। तो वो स्थिति इसके साथ ऐसी दोस्ती हो गई अपनी शरीर के साथ कि दो होते हुए अभी गिनती में एक आ रही है, काउंटिंग में। तो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा किसको कहते हैं जो दो को एक गिनता है। तो मिथ्या दृष्टि मतलब उसकी मान्यता गलत है, विपरीत है, क्योंकि गिनती गलत कर रहा है, तो फिर उसको अपन सही कैसे कह सकते हैं। तो ये स्थिति बनती है। अब क्या होता है, तो वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण के तीव्र मंद मध्यम परिणाम से यथावस्थिता, यथावस्थित हो जाते हैं, जहां जैसे जिसकी जगह है वहां वो व्यवस्थित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये सावधानी से सुनने योग्य है ये पंच परिवर्तन, और अगर ये चीज अपने अंदर आ गई तो फिर आप ध्यान में बैठ करके इसका यूं ज्यों का त्यों स्मरण कीजिए कि ऐसा पढ़ा था हमने, तो एकदम बेहतरीन आपकी सामायिक हो जाएगी। सामायिक में जो चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति है, वो ठीक है, वो एक अच्छी बात है, क्रियानुष्ठान है, उसका भी महत्व है आगम में। पर उसके बाद सामायिक का ही तो समय है जब अपन अपने से जुड़ते हैं, बाकी समय अपन दूसरों से जुड़ते हैं। तो सामायिक के समय आप कुछ जाप आदि भी कर लीजिए, पहले परमात्मा की आराधना हो जाए, फिर उसके बाद ये आगम के जो वचन है, वैराग्य वचन, संवेग वचन, अनुप्रेक्षा, तत्व चिंतन आदि का आलंबन लेकर आप मन वचन काय की गुप्ति पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, शांत चित्त होकर समता भाव के साथ ध्यानस्थ हो सकते हैं। और ये जो परिवर्तन बताया जा रहा है, इसको सावधानी से सुनकर ज्यों का त्यों आप इसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि ये पंच परिवर्तन आगे चल करके वैराग्य में निमित्त बन जाता है। जगत काय स्वभावो वा वैराग संवेग वैराग्यार्थम, जगत के स्वभाव को भावित करने से संवेग होता है और शरीर के स्वभाव पर विचार करने से वैराग्य होता है। कि ये शरीर मतलब जिन वस्तुओं से बना है, क्या वो वस्तुएं भोग्य हैं? कोई भी सज्जन, कोई भी सद्बुद्धि प्राणी क्या मांस, चमड़े और हड्डी से खेल कर सकता है? क्या ये प्रीति के स्थान है? तो विरक्ति होती है इस शरीर के कारण मैं संसार में भटक रहा हूं, एक शरीर की सेवा करता हूं, मुझे दूसरे शरीर मिल जाते हैं, ये छूटता है और तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है। 3 समय से ज्यादा मैं अनाहारक भी नहीं रह सकता, रास्ते में 3 समय से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, तुरंत मुझे फिर दूसरे शरीर में प्रवेश मिल जाता है। फिर इस शरीर में, इस औदारिक शरीर में क्या सार है? जब वैकृत शरीर को भी ज्ञानी जन पिंजरा मानते हैं, 3 पांडव मोक्ष चले गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि, जब वो सर्वार्थ सिद्धि में गए हुए पांडव अपने 3 ज्येष्ठ भ्राता मुनिराजों का स्मरण करते हैं, तब उनको निस्संदेह ये विचार आता है कि वो क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ थे और हम उपशमक श्रेणी पर। काश वो क्षपक श्रेणी हमें प्राप्त होती तो हम सिद्धालय में होते। सिद्धालय नहीं मिला तो ये देहालय मिल गया। ये 33 सागर का कारावास मिल गया। ये निश्चित है कि 33 सागर के बाद एक भव में उनको मोक्ष प्राप्त होना है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भव की श्रद्धा नहीं रखता है, उसको एक एक भव अखरता है, भारी लगता है। कैसे? मेरा सिद्ध स्वरूप है, फिर मैं असिद्ध स्वरूप में एक क्षण भी कैसे सहन कर सकता हूं अपने आप को? इतना अद्भुत वैराग्य होने पर मुक्ति निकट होती है। अब क्या होता है? द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा,
ये शरीरादिक के योग्य जो परमाणु होते हैं, ये एक समय में आकर दूसरे समय में निकल भी जाते हैं, कुछ और समय तक रुक जाते हैं, तो कम से कम एक समय में निकल सकते हैं, आए और एक समय में झड़ गए, तो दूसरे आदि समयों में निर्जीर्ण हो जाते हैं, और निर्जीर्ण होने के बाद जो आने वाले परमाणु हैं वो अभी रुके तो नहीं है, क्योंकि अपना जो मन वचन काय संबंधी योग है वो जारी है। तो ये चलते रहेगा क्रम, आते रहेंगे परमाणु और निकलते भी रहेंगे। तो आचार्य कहते हैं अगृहीतान अनंत वारान अतीत्य, उसने वो एक समय अपन शुरुआत का समय ख्याल में रख लें, उसके बाद वो अनंत बार, उस समय जो अनंत परमाणु आए थे पहले समय में, वो दूसरे अधिक समय में झड़ते जा रहे हैं। तो पहले समय में जो परमाणु नहीं आए थे उनको ग्रहण करता है, फिर ग्रहण करता है, फिर ग्रहण करता है, ऐसे अनंत बार ग्रहण करता है। फिर मिश्रकांश चानंत वारान अतीत्य, फिर जो पुराने झड़ गए थे उस पहले समय वाले में से, और जो पहले समय वाले नहीं थे, ऐसे परमाणुओं को एक साथ ग्रहण करता है, अगृहीत और गृहीत दोनों प्रकार के परमाणुओं को ग्रहण करता है, तो वो मिश्र परमाणु कहलाते हैं। और मध्ये गृहीतांश चानंत वारान अतीत्य, और इन सबके बीच बीच में अनंत बार पहले समय में ग्रहण किए हुए परमाणुओं को भी ग्रहण कर लेता है। यानी एक जीव जब ऐसे संसार में भटकता है भवभवांतरों तक, तब कितनी बार तो पुराने परमाणुओं को ग्रहण करता है, कितनी बार नए परमाणुओं को ग्रहण करता है, और कितनी बार इन दोनों के मिश्रण वाले परमाणुओं को भी ग्रहण करता है। ऐसे परमाणु जो पहले ग्रहण किए जा चुके हैं और उसके साथ कुछ ऐसे परमाणु भी है जो ग्रहण नहीं किए गए हैं, तो मिश्र हो गए, उनको ग्रहण करता है, फिर छोड़ता भी है। और इतना सब होने के बाद यहां तीनों में अनंत बार लिखा है, अनंत बार तीनों प्रकार के परमाणु को ग्रहण करता है। तो तैव तेनैव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नो कर्म भाव आपद्यते मापद्यन्ते यावत् तावत् समुदितं नौ कर्म द्रव्य परिवर्तनम्। फिर कभी कोई ऐसा समय आता है जब वो उन परमाणुओं को जो पहले समय में ग्रहण किए थे उनको फिर से ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है, माने यहां वाले परमाणु जैसे थे वो यहां वाले ही बन जाएंगे फिर से, और यहां वाले जो थे वो यहां वाले बन जाएंगे, यहां वाले बन जाएंगे, बिल्कुल ज्यों के त्यों, तीव्र मंद मध्यम भाव से वो स्निग्ध रूक्ष आदि सारे स्पर्शों को यथावत पूर्ववत प्राप्त कर ले, तो कितना काल लग जाए, वो जितना काल लगता है उसको सब मिला करके अनंत भाव हो जाते हैं, तो उतना काल जो है वो एक नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन है, जिसको पुद्गल परिवर्तन कहते हैं। इसका आधा काल जब किसी जीव का शेष रहता है तब वो सम्यक्त ग्रहण के योग्य होता है, उसमें भी अनंत भव होते हैं। इसका उदाहरण पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ऐसा देते थे कि किसी पीपल के पेड़ को अग्नि ने भस्मसात कर दिया, राख और धुआं बन गया उसका और खत्म हो गया वो पेड़। अब वो जो धुएं के परमाणु हैं, वो जो राख के परमाणु हैं, वे परमाणु स्थिर तो रहते नहीं हैं, वो कहीं से कहीं बिखर जाते हैं, और बिखरने के बाद कभी अनंत काल के बाद जब वही के वही परमाणु वैसे के वैसे पीपल के पेड़ के रूप में वापस परिवर्तित हो जाएं, उन्हीं परमाणुओं से उसकी शाखाएं बने जो उस समय थे शाखा के रूप में, और उन्हीं परमाणुओं से उनके पत्ते बने जो पहले वैसे ही पत्ते थे। मतलब ये समझ लो कि उस पीपल के पेड़ की ज्यों की त्यों रूपरेखा वापस तैयार हो जाए उन्हीं परमाणुओं से, तो अपने को लगता है कि ये संभव नहीं है। कैसे हो सकता है? इतना विशाल जगत है और अनंत परमाणु है, कहां से कहां बिखर जाते हैं। लेकिन नहीं, ये अपने ज्ञान में तो कठिन है, लेकिन है जब केवली भगवान कह रहे हैं कि ये परिवर्तन है, संसारी जीव ये सारे परिवर्तन करते ही आ रहे। परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे एक चक्का है वो ऐसे घूमता है पूरा, लेकिन उसका एक पॉइंट है जो बार बार जमीन के पास आता है, जहां से हवा भरते हैं ना, वो ऐसे ऊपर जाता है, फिर घूम 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 करके फिर वापस उस पॉइंट पर आता है। उसी तरह ये परमाणु जो है बिखर जाते हैं, फिर यहां वहां होकर के फिर वापस कभी उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो उतना जो काल है अनंत काल, वो एक पुद्गल परिवर्तन का काल है। ऐसे असंख्यात पुद्गल परिवर्तन एक एक जीव करता है। कर्म बांधते समय बेहोश रहता है, कर्म फल प्राप्त होता है तब रोता है, आकुलित होता है। यही काम अनादि से होता है। इसलिए आचार्य कई बार पूछते हैं जीव से कि एक बार विचार कर ले, कब तक करना है ये काम, कब तक भटकना है इस जगत में, इस संसार में, कब तक तुझे नए नए शरीर धारण करना है। देखिए इसमें और भी आचार्य महाराज कह रहे हैं, कर्म द्रव्य परिवर्तन उच्यते। फिर से पुद्गल, अब दोनों ही पुद्गल हैं, नौकर्म जो आहार वर्गणा है वो भी पुद्गल वर्गणा है, और कार्मण वर्गणा है वो भी पुद्गल वर्गणा है। तो आहार वर्गणाओं वाला जो हिसाब किताब था, जो विवरण था, वो आचार्य महाराज ने नवकर्म द्रव्य परिवर्तन के रूप में स्पष्टीकृत किया। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन को और समझाते हैं, बात वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बस दो प्रकार से समझा रहे हैं, क्योंकि दोनों को जीव ग्रहण कर रहा है, इसलिए दो प्रकार से विवरण तो शक्य है और उचित भी है। एकस्मिन् समये एकेन जीवेन अष्टविध कर्म भावेन पुद्गलाय गृहीताः समयाधिकामावलिकाम् अतीत्य द्वितीयादिषु द्वितीयादिषु समयेषु निर्जिताः। एक जीव एक समय में, जैसे वहां पर उनने आहार वर्गणा ग्रहण की थी, यहां पर कार्मण वर्गणा ग्रहण कर लेते हैं। तो कार्मण वर्गणा ग्रहण करके आठ प्रकार के कर्म रूप में परिवर्तित हो जाती है वर्गणा एक ही समय में। जैसे अपनी जठराग्नि से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और अलग अलग चीजें जो रहती है ना भोजन में, वो अपनी जठराग्नि के द्वारा पच करके व्यवस्थित हो जाती है। कुछ चीजें अपने मांस को पुष्ट करती है, कुछ चीजें वसा के रूप में त्वचा के नीचे जम जाती है, कुछ चीजें और कहीं सेट हो जाती है। तो बस उसी प्रकार एक समय में आने वाली जो कार्मण वर्गणा है वो अपने भावों का निमित्त पा करके कोई ज्ञानावरण बन जाती है, कोई दर्शनावरण बन जाती है, कोई वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतरा, इस तरह से व्यवस्थित हो जाती है। ये अनादिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है और स्वभाव है वैसा, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव, ऐसा ही कारण कार्य विधान है। तो आचार्य कहते हैं कि 8 प्रकार के कर्म रूप से ये गृहीता पुद्गला, जो पुद्गल वो ग्रहण कर लेता है, तो समयाधिकाम क्या होता है कि एक आवली काल होता है, एक समय का माप है, उसको अचलावली बोलते हैं। कर्म बंधने के बाद एक आवली तक उस कर्म को चलायमान नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसमें उतना समय जो है आवली का निकालना ही होता है। उसके बाद समय आधे काम कह रहे, एक समय अधिक हो जाए तो फिर वो कर्म झड़ सकता है। तो एक समय अधिक, एक आवली को बिताकर द्वितीयादिषु समयेषु, द्वितीय अधिक समयों में निर्जीर्णः, वो कर्म के परमाणुओं को निर्जीर्ण करता है, झड़ा देता है। और पूर्वोक्ति नहीं क्रमेण नौकर्म द्रव्य परिवर्तन में जो क्रम बताया था, उस कथित क्रम से ही तैव तेनैव प्रकारेण, वे ही कार्मण वर्गणा के परमाणु उसी प्रकार से उस जीव के कर्म भाव को आपद्यन्ते, वापस प्राप्त कर लेते हैं। जैसे प्रथम समय में उसने जो कर्मों की अवस्था बनाई थी, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि को लेकर के, बिल्कुल वैसी ही स्थिति वापस वो कभी अनंत जन्मों के बाद बना लेता है। बीच में कई बार अगृहित कार्मण वर्णाओं को ग्रहण करके छोड़ता है, फिर कई बार मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ता है, कई बार गृहित वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ता है, और फिर कभी किसी काल में वापस वो जो पहले समय में जैसे ग्रहण किए थे वैसी ही स्थिति बन जाती है। तो फिर उसको उतना पूरा काल यावत तावत कर्म द्रव्य परिवर्तन, वो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। उक्तं च कहा भी है, सव्वे विपुग्गला खड़ु कमसो भुत्तु जियाय जीवेण अक्षय अनंत खुत्तो पुग्गल पर्यट संसारे। वास्तव में एक एक जीव ने क्रमशः सारे पुद्गल भोग भोग करके छोड़े हुए हैं, भोग भोग करके छोड़े हुए हैं, यानी सब पुद्गलों को उसने अपने शरीर के रूप में या फिर कर्मों के रूप में स्वीकार किया, और फिर वो सब झड़ भी चुके हैं, अलग भी हो चुके हैं उससे। अच्छा ही अनंत खुद तो वो अनंत भवों में स्थित रहता है वह जीव, और पुद्गल पर्यट संसारे, पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में वह अनंत भवों में स्थित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुद्गल परिवर्तन में अनंत बार उसको जन्म तो लेना ही होता है, अनंत जन्म होते हैं, और अनंत के भी अनंत भेद हैं, संख्यात के संख्यात भेद हैं, असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, और अनंत के अनंत भेद हैं। तो इस तरह ये द्रव्य परिवर्तन का वर्णन हुआ, पर चूंकि द्रव्य परिवर्तन में इन्होंने पुद्गल की प्रधानता से उसका विवरण किया, दोनों में पुद्गल द्रव्य का ही वर्णन था, पुद्गल द्रव्य सापेक्ष ही वर्णन था, चाहे वो नौकर्म हो चाहे कर्म हो। नौकर्म में कौन सा द्रव्य था, कौन सी वर्गणा थी, आहार वर्गणा थी, और कर्म द्रव्य परिवर्तन में कौन सी वर्गणा थी, कौन सी अभी बताया था ना, कुंडली कौन सी वर्गणाओं को ग्रहण करता है कर्म द्रव्य परिवर्तन में? कार्मण, कर्म वर्गणा नहीं बोलना, कार्मण वर्गणा होती है, कार्माण भी नहीं बोलना, कार्मण वर्गणा होती है, उनको ग्रहण करता है। तो ये पुद्गल परिवर्तन है जो अपन पहले पढ़ा है दूसरे सूत्र में, सम्यक तो चरित्र में, तीसरे सूत्र में। तो वहां पर यह था कि जब आधा पुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है, अब इसमें क्या है कि एक विद्वान ने ऐसा भी अपना अभिमत रखा कि जीव असंख्यात पुद्गल परिवर्तन करता आ रहा है, तो अभी वर्तमान में जो पुद्गल परिवर्तन चल रहा है उसका आधा काल रह जाए तो वो सम्यक के योग्य होता है। पर ऐसा कहने पर एक प्रश्न अवश्य उपस्थित होगा कि आपको कैसे मालूम कि उसका पुद्गल परिवर्तन किस बिंदु पर प्रारंभ हो रहा है? उस बिंदु का ज्ञान होने पर ही आधा और पूरे का हिसाब लगा सकोगे। समझ में आ रही बात? अपने को ये पॉइंट पता हो तो यहां से स्टार्ट करें, और जब अनादि काल है, पीछे का काल अनादि है, तो फिर कहां पॉइंट लगेगा? ये जो वर्तमान पुद्गल परिवर्तन चल रहा है, ये अपन कैसे उसमें बिंदु लगा सकते हैं? अब कहो कि केवली भगवान के ज्ञान में वो चीज आ रही है कि ये असंख्यात पुद्गल परिवर्तन करता चला आ रहा है जीव, तो इस समय जो चल रहा है उसका आधा काल बच जाए तब उस सम्यक ग्रहण के योग्य होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनादि काल से उसने जितने पुद्गल परिवर्तन किए हैं, सभी पुद्गल परिवर्तनों का आधा काल बीतने के बाद वो सम्यक के योग्य हो जाता है, और फिर नेक्स्ट पुद्गल परिवर्तन प्रारंभ करने पर जब तक उसका आधा काल ना बीत जाए तब तक अयोग्य हो जाता है। समझ रहे बात को? तो ये कैसा हिसाब बनेगा कि एक केवली भगवान कह रहे हैं कि वो सेकंड हाफ में योग्य है और फर्स्ट हाफ में अयोग्य है, और पुद्गल परिवर्तन असंख्यात चले आ रहे हैं, तो किसी भी पुद्गल परिवर्तन के आधे काल तक वो सम्यक के अयोग्य रहेगा और आधे काल तक योग्य हो जाएगा? ये बात विचारणीय है। और यदि अपन ऐसा अर्थ निकालते हैं कि जीव का काल, संसार काल, जीव का संसार काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन नामक रह जाता है, यानी एक नाम तो पुद्गल परिवर्तन है लेकिन उसको आप हाफ कर दो तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन उसका नाम हो जाएगा, तो उतना काल रह जाने पर वह सम्यक ग्रहण के योग्य होता है। और देखिए, इसकी पुष्टि और भी दूसरे प्रकार से भी संभव है। ये काल नहीं की अपेक्षा से कथन था। एक अकाल नहीं की अपेक्षा से भी कथन होता है, जो धवला की छठी पुस्तक में और अन्य भी स्थानों पर आता है कि एक जीव सम्यक्त के बल से अनंत संसार को काटकर अर्ध पुद्गल परिवर्तन बना देता है। ये वाक्य भी आगम में आया हुआ है। तो अनंत संसार को अर्ध पुद्गल परिवर्तन बना देता है सम्यक्त के बल से, इसका अर्थ ये हुआ कि उसको अर्ध पुद्गल परिवर्तन में मोक्ष जाना ही जाना है। यहां पर सम्यक्त भाव का महत्व बताया है, और वहां पर सर्वार्थ सिद्धि आदि में काल का महत्व बताया है, और मात्र काल का महत्व बताया हो ऐसा भी नहीं समझना, क्योंकि वहां पर यह लिखा है काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्। तो आदि शब्द में उन्होंने बाकी सब चीजों को ग्रहण किया है पर काल लब्धि को पहले रखा है, कि उतना काल अवशिष्ट होने पर सम्यक्त के योग्य हो जाता है। योग्य होने मात्र से सम्यक दृष्टि बन जाए ऐसा नियम नहीं है। फिर दूसरी काल लब्धि और तीसरी काल लब्धि जब पूरी करता है तब सम्यक दृष्टि बन जाता है। और वहां कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि बना इसलिए इतनी स्थिति रहेगी संसार की, अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र बचा ली उसने। तो दोनों कथन शैली में भेद है। और चूंकि इतना ही संसार बच रहा है वहां पर, तो फिर यहां पर भी अपने को उसके साथ मिला करके अभिप्राय ग्रहण करना होगा। किसी भी पुद्गल परिवर्तन का आधा हिस्सा लेकर के अपन अर्थ नहीं लगा सकते। ऐसा अभी हमें प्रतीत हो रहा है, तो हमने आपके सामने ये बात रखी है। जो शास्त्र के वचन थे वो भी आपके सामने हैं। फिर विशेष निर्णय और भी विद्वानों से, और भी बड़े आचार्य और साधु हैं, कई माताजी लोग भी हैं, उनसे भी अपन पूछ सकते हैं। तो इस तरह ये द्रव्य परिवर्तन का विवरण यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके उपरांत क्षेत्र परिवर्तन का वर्णन आगे किया जाएगा। जय नम जयतु शास्त्रनम।